हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जो गर्व संवाद और गर्व ज्ञान से अपना सीधा संबंध स्थापित करती हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सिद्धि, योर बडी, योर कोच। तो आज हम एक बार फिर गर्व संस्कार और गर्व ज्ञान और गर्व संवाद से जुड़ी हुई एक और खूबसूरत कथा को सुनेंगे। ये बात है उस समय की जब राजा जनक राज किया करते थे और उन्हीं के राज्य में एक ऋषि जो कि बहुत ही जाने माने ऋषि थे, जिनके कई सारे शिष्य थे और उनसे शिक्षा दीक्षा लेने के लिए दूर दूर से राजा अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए भेजते थे। इन गुरु का नाम था, इन ऋषि का नाम था ऋषि उद्यालक। और इन्हीं ऋषि उद्यालक के आश्रम में एक और ब्राह्मण पुत्र जिनका नाम था कहोड शिक्षा लेते थे। कहोड एक ब्राह्मण पुत्र होने के नाते शिक्षा में काफी पारंगत थे। उनका ज्ञान सर्वोपरि होता था अपने मध्यकालीन दूसरे शिष्यों के साथ। कहोड काफी इंटेलिजेंट थे और इसी वजह से शिक्षा पूरी करते करते कहोड अपने गुरु उद्यालक के चहीते भी बन चुके थे। और शिक्षा दीक्षा पूरी होते होते गुरु कहोड ने क्या किया, गुरु उद्यालक ने गुरु कहोड को अपनी पुत्री दान करी जिनका नाम था सुजाता। तो अब ऋषि उद्यालक ने अपनी पुत्री सुजाता का जब विवाह कहोड ऋषि के साथ किया तो वे अपना जीवन यापन करने लगे। जल्द ही सुजाता गर्भवती हुई। सुजाता चाहती थी कि उनका गर्भ में बड़ा हो रहा, पल रहा शिशु भी अपने पिता और अपने पति की तरह ज्ञानवान हो। और इसीलिए वो क्या करती थी, वो अपने पिता ऋषि उद्यालक और अपने पति ऋषि कहोड के साथ जब गुरु ज्ञान प्रसाद रूप में शिष्य को दिया जाता था उस समय वहाँ मौजूद रह करके वो भी शिक्षा लेती थी ताकि उनके गर्भ में पल रहा शिशु भी ज्ञानी हो और सभी मंत्रों का सही उच्चारण और सभी ज्ञान को सही तरह से वो ग्रहण कर सके। एक बार की बात है कि सुजाता अपने 5वें महीने में थी, गर्भवती थी और उस समय ये कथा बताती है कि वो अपने पति ऋषि कहोड के साथ शास्त्रार्थ को सुन रही थी। उस समय शास्त्रार्थ उनके पति ही कर रहे थे, ऋषि कहोड, और ऐसे में वो एक बड़ा सुंदर छंद गा रहे थे ऋषि कहोड, जिसपे सुजाता के गर्भ से एक आवाज़ आई कि पिताश्री, यदि आप बुरा ना माने तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से आप ये छंद गा रहे हैं इसको इस तरह से नहीं गाना चाहिए। वहाँ और भी ऋषिगण मौजूद थे। ये सुनकर ऋषि कहोड को अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने गुस्से में अपने ही पुत्र को ये श्राप दे दिया कि तुम विकलांग पैदा होगे, अपने आप को बहुत ज्ञाता समझते हो, तुम विकलांग पैदा होगे। उस वक्त सुजाता ने अपने पति के क्रोध को शांत कराया और माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चली गई। और इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करी और ज़्यादा सोचा भी। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। सुजाता ने अपने पति ऋषि कहोत से कहा कि अब हमारे घर में संतति आने वाली है, एक पुत्र या एक शिशु जन्म लेने वाला है, तो हमें और भी अधिक धन की आवश्यकता रहेगी, तो आप धन अर्जन के लिए राजा जनक के पास जाइए। हमने सुना है कि वो एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करने जा रहे हैं। पहले के समय में पर कल्याण और सभी के कल्याण के लिए राजा ऋषि मुनियों के साथ मिलकर बड़े बड़े यज्ञ और पूजाएं करते थे। इसी तरीके का एक बड़ा यज्ञ आयोजित करने का उन्हें खबर ज्ञात हुई थी। तो जैसा कि माता सुजाता ने कहा, ऋषि कहोद उनकी बात को मानते हुए राजा जनक के पास पहुँचे। जब वो राजा जनक के पास पहुँचे तो उन्हें राजा जनक ने कहा कि अब जो मैं यज्ञ करना चाहता था वो नहीं कर पाऊँगा। ऋषि कहोद ने पूछा, भाई क्यों? तो राजा जनक बोले, एक ऋषि हैं, बड़े ऋषि, जिनका नाम है ऋषि बंदी। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अपने यज्ञ उन्हीं ऋषियों द्वारा करवा सकता हूँ या आयोजित कर सकता हूँ जो ऋषि बंदी को शास्त्रार्थ में हरा दें। ऋषि बंदी के लिए एक कथा प्रचलित थी। ऋषि बंदी अपने साथ जिन भी दूसरे ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ करते थे वो एक ही शर्त पे करते थे कि यदि तुमने मुझे हरा दिया तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर यदि तुम मुझसे हार गए शास्त्रार्थ में तो तुम्हें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे इसी नदी के अंदर। और ये कथा प्रचलित थी कि तब तक आपका शास्त्रार्थ या आपकी निपुणता, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपका जो नॉलेज है, विजडम है, वो प्रूव नहीं होगा जब तक कि आपका ऋषि बंदी के साथ एक शास्त्रार्थ या एक डिबेट ना हो जाए ऑन दी विजडम टॉक। ये बात जब राजा जनक के द्वारा ऋषि कहोत को पता चली तो राजा की परेशानी को दूर करने के लिए वे ऋषि बंदी के पास पहुँचे और ऋषि बंदी से उस डिबेट के लिए हाँ कर दिया, सारी चीज़ें जानते हुए। तो हुआ क्या, जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो जैसा कि हमेशा से होता आया था, ऋषि कहोद ऋषि बंदी से शास्त्रार्थ में उस डिबेट में हार गए और जिसके चलते बंदी ऋषि की जो बात थी वो पूरा करने के लिए कहोद ऋषि को अपने प्राण छोड़ने पड़े। जब ये खबर सुजाता को पता पड़ी आश्रम में तो वो बहुत दुखी हुई। अपने गर्भस्थ शिशु के साथ जब ये खबर उन्हें मिली कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही बड़ा दुख था, दुख का कारण बना। और वो बहुत ही निराश हो गई क्योंकि उन्हीं के कहने पर उनके पति ऋषि कहोद राजा जनक के पास गए थे और ये सारी घटना घटी थी। लेकिन समय गुजरा, माता सुजाता अपने पिता ऋषि उद्यालक के आश्रम में ही रहीं और उन्होंने अपना समय की अवधि पूरी करते हुए एक सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन ये जो बालक जन्मे ये विकलांग थे, इनका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था। धीरे धीरे ये बालक बड़ा होने लगा अपने नाना ऋषि उद्यालक के आश्रम में और अपनी माता के साथ। अपने नाना के साथ उनकी शिक्षा पूर्ण होती रही और बहुत जल्दी समय गुजरा और वो बहुत ही ज्ञानी बच्चा बन के लगभग 12 साल की उम्र में पहुंचा। इस बालक का नाम था अष्टवक्र। क्योंकि उनका शरीर 8 जगहों से मड़ा हुआ था तो इनको नाम मिला था अष्टवक्र। जब अष्टवक्र 12 साल की उम्र के हुए तो उन्हें अपने पिता के बारे में हुई घटना का ज्ञात हुआ। उन्हें पता चला कि उनके पिता के साथ क्या हुआ था, और फिर ये जानकर वो भी बड़े दुखी हुए और वो पहुंच गए राजा जनक के पास। जब अष्टावक्र राजा जनक के दरबार पर पहुंचे तो बाहर दरबारियों ने जब अष्टावक्र को देखा तो क्या हुआ, वो बड़े हंसे, उन्होंने बहुत मजाक बनाया ऋषि अष्टावक्र का। हंसते हंसते सभी लोग उनका मजाक बनाने लग गए। तब अष्टावक्र ने उन सभी से कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके रूप रंग से नहीं होती, बल्कि उसके ज्ञान से होती है। जब ये खबर राजा जनक को मिली तो उन्होंने ऋषि पुत्र अष्टावक्र को अपने दरबार में बुलाया। ऋषि अष्टावक्र के ज्ञान से राजा जनक भी समझ गए कि अष्टावक्र कोई साधारण ऋषि नहीं है, कोई साधारण बालक नहीं है, ये एक दिव्य ज्ञानी बालक है। और बालक अष्टावक्र ने राजा जनक से आज्ञा मांगी कि मैं अब अपने पिताजी के, जिनकी वजह से मेरे पिताजी का, उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, मैं उन ऋषि के साथ उनकी चुनौती स्वीकार करते हुए उनके साथ शास्त्रार्थ की डिबेट करूंगा। और वे पहुंच गए ऋषि बंदी के पास। उन्हें पता था कि ऋषि बंदी की क्या शर्त है। समय बीता, उनका शास्त्रार्थ शुरू हुआ और ये खबर दूर दूर तक फैलने लगी कि एक छोटा सा बालक, एक विकलांग बालक जिसका नाम अष्टावक्र है, वो एक निपुण ऋषि को, ऋषि बंदी को शास्त्रार्थ में चुनौती देकर बैठे हुए हैं और लगातार उनको सही जवाब दे रहे हैं, उनको संतुष्ट कर रहे हैं। और एक समय आ गया जब अष्टावक्र ने ऋषि बंदी को हरा दिया। जब ऋषि बंदी हार गए तो राजा जनक ने कहा कि जिस तरह से आपने आज तक आपसे चुनौती में हारे हुए ऋषि मुनियों के प्राण त्याग करने की मांग करी है, तो आज आपको भी अपने प्राण त्यागने होंगे। तब ऋषि बंदी अपने असली स्वरूप में आए। ऋषि बंदी वरुण देव के पुत्र थे और वरुण देव ने ऋषि बंदी को इसीलिए धरती पर भेजा था कि वो महान ऋषि मुनियों को छांट सके या उनको सही मायने में उनकी पहचान दिला सके, जो वाकई में ज्ञानी है। और यही उनका काम था राजा जनक के उस यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए। जब ये खबर ऋषि बंदी ने सभी को दी तो उन्होंने कहा कि जितने भी ऋषि मुनि आज तक मेरे से शास्त्रार्थ में हारे और उनके प्राण इस नदी में चले गए, वे सभी दोबारा जीवित हो जाएंगे। और ये सुनकर सभी ऋषि, ऋषि कहोद भी, जितने भी ऋषियों ने अभी तक ऋषि बंदी से हार करके अपनी प्राणों का त्याग किया था, वे सभी जीवित होकर के आ गए। और जब ऋषि कहोद को पता चला कि उन्हीं के पुत्र, जिसको उन्होंने खुद अपने मुख से ये श्राप दिया था कि वो विकलांग होंगे, और जिसका नतीजा भी हुआ कि वो 8 जगहों से मुड़े हुए थे, तो उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ कि उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, अपना अहंकार नहीं दिखाना चाहिए था। और अपने बेटे को उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम जिस नदी ने मेरा अहंकार छीना है, उसी नदी में आप जाकर स्नान करिए और मुझे क्षमा करिए। जब वहाँ से अष्टावक्र ने अपने पिताजी के चरण स्पर्श किए और जब वे अपने पिताजी के पास नदी से स्नान करके आए, तो वहाँ नदी से अष्टावक्र ने जब डुबकी लगाई तो वो 8 जगहों से मुड़े हुए थे, अष्टावक्र थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तब वो एक सुंदर नौजवान बालक के रूप में निकले। तो ये कथा थी ऋषि अष्टावक्र से संबंधित। यहाँ हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए, बेसिकली ये जितनी भी स्टोरीज हम सुनते हैं हमारे एंशियंट टाइम्स की, हमारे वेदास, हमारे पुराणास की, तो ये हमें बहुत सारी शिक्षा देने के लिए दी गई है। जैसे कि जब ऋषि पत्नी सुजाता सबका ध्येय था कि उनका पुत्र, उनके संतान की, उनकी जो गर्भ में संतति है, संतान है, वो बहुत ज्ञानी हो। और उसके लिए उन्होंने शास्त्रार्थ सुनना शुरू किया, वैसी संगत करनी शुरू करी, तो उस चीज़ का कितना असर हुआ कि एक बालक, एक दिव्य बालक, उतना ही ज्ञानी बालक उन्होंने जन्म दिया। साथ ही जैसा कि ऋषि कहोद को लगता था कि उनसे बड़ा कोई नहीं, और उनका अहंकार इतना बड़ा हो गया था कि उन्होंने अपने स्वयं के पुत्र को श्राप दे दिया, कर्स दे दिया, बैड वर्ड्स दे दिए, और जिसकी वजह से उन्होंने खुद भी अपने अहंकार में के कारण ऋषि बंदी से चुनौती ली और वे खुद भी अपने प्राणों को हार गए। तो यहाँ ये भी पता चलता है कि कैसे आपका अहंकार आपको ले डूबता है। लेकिन अंततः जो शारीरिक तौर पे दुर्बल है, वो अपनी अपने जीवन को सार्थक ना कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप सही जगह, सही एनवायरनमेंट और सही लोगों के बीच में हैं, तो अगर आप में कोई डिसेबिलिटी, दुर्बलता या कोई भी कमी है, तो आप उसे भी ओवरकम कर सकते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ ऋषि अष्टावक्रा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बी वेरी माइंडफुल व्हाइल यू आर हैविंग अ बेबी इन योर वूम, लेडीज। सो वी हैव वेरियस सच स्टोरीज, सच रियल इंसिडेंसेस दैट प्रूव्स दैट how much it affects the growth and development of the baby inside your womb with what you're doing, what you're hearing, and what you're acting with. So with this, thank you so much. Thank you again for all your love and support and appreciation.